दर्शन की आवाज में रसनिधि से सूरदास के पद को सुनिए। अभिगति गति कछु कहत न आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित को टोस उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुंजाति जुगति बिनु निरालंब मन चक्रित धावे, शब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन लीला पद गावे। संदर्भ: इस पद में भक्त कवि सूरदास निर्गुण निराकार ब्रह्म की अवधारणा को असाधारण तथा सामान्य जन की ग्रहण शक्ति के अयोग्य बताकर सगुण साकार ब्रह्म के कृष्ण स्वरूप को मधुर लीला के गान का आग्रह करते हैं। व्याख्या: जो जाना ना जा सके ऐसे अनुभव रूप की गति उसका स्वरूप कुछ कहते नहीं बनता। जैसे गूंगा मनुष्य मीठे फल के रस को हृदय में ही अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर पाता, वैसे ही वह आत्म तत्व का परम स्वादमय है, सर्वदा उसमें एक रस है तथा अपार तुष्टि देता है, लेकिन मन तथा वाणी के लिए सदा अगम्य है, इंद्रियां उसे पा नहीं सकती। उसे जो प्राप्त कर चुका है वही जानता है। रूप रेखा रहित निर्गुण जाति रहित युक्तियों से अप्राप्य उस परम तत्व में कोई सहारा न होने से कैसे दौड़े। अतः उसको सब प्रकार से अगम्य जानकर सूरदास जी कहते हैं, मैं तो सगुण स्वरूप की लीला का गान करता हूँ। काव्य सौंदर्य: अलंकार जैसे उड़ी आवे में दृष्टांत है, अन्य पंक्तियों में भी यही अलंकार है। गूंगे का फल लौकिक दृष्टांत है, कबीर में भी यही भाव मिलता है। गूंगे केरी सरकरा बैठा मुस्काई, निर्गुण ब्रह्म की तुलना में सगुण ब्रह्म सहज और सुग्राह है, इसकी तर्कपूर्ण प्रतिष्ठा यहाँ हुई है। माधो जू यह मेरी इक गाई, अब आज ते आप आ गए दई, ले आइये चढ़ाई यह अति हरहाई, हटकत हूँ बहुत अमारत जाती, फिरति बेद बन ऊख उखारित, सब दिन अरु सब राती, हित कर मिले लेहु गोकुलपति, अपने गोधन माँ सुख सोऊ सुनि बचन तुम्हारे, देहु कृपा करी बाँ, निर्धक रहो सूर के स्वामी, जनि मन जानो फेर, मन ममता रुचि सो रखवाड़ी, पहले लेहु निबेर। संदर्भ: प्रस्तुत पद भक्ति से संबंधित है। इसमें कवि अपने आराध्य से निवेदन कर रहा है। सूर्य के आराध्य भगवान श्री कृष्ण गोपाल के रूप में विश्रुत है। यहाँ पर कवि अपने इंद्रियों के प्रतिनिधि मन पर गाय का आरोप करके उसकी संचलता का निरूपण करते हुए उसे चराने के लिए अर्थात नियंत्रित करने के लिए गोपाल कृष्ण को सौंप दे रहा है। व्याख्या: माधव जी यह मेरी एक गाय है, अब आज से मैं इसे आगे के लिए आपको सौंप रहा हूँ, इसे आप चरा लाइए, यह अत्यंत हरहाई है, बहुत रोकने पर भी बिना रास्ते ही जाती है, सारे दिन और सारी रात वेद रूपी वन में घूमती हुई गन्ने उखाड़ती रहती है, हे गोकुलनाथ इसे अपने गोधन में प्रेम से मिला लीजिए, कृपा करके मुझे सहारा दीजिए जिससे वचन सुनकर मैं सुख से सो सकूँ, निश्चिंत हो जाऊँ। सूरदास जी कहते हैं, हे स्वामी आप निश्चिंत रहे, मन में कोई शंका न करिए, स्वेच्छापूर्वक मेरा मन ममत्व लेकर इस गाय की रखवाली पहले ही चुका लीजिए। काव्य सौंदर्य: अलंकार गाय को मन का प्रतीक मानकर संपूर्ण पद में सूर ने सुंदर संग रूपक उपस्थित किया है। यह गाय सहज नहीं अपितु धृष्ट और चंचल है, कृष्ण भक्त मन के स्वामी है और कुशल गोपालक भी, इसलिए भक्त का यह निवेदन सारगर्भित और अभिप्राय पूर्ण है। इस पद में सुघर्ष और चंचल इंद्रियों से उत्पन्न भक्त के हृदय की पीड़ा सुंदर अभिव्यंजना हुई है। रे मन आपू को पहचानी, सब जन्म तय भ्रमट खायो, अजहू तो कछ जानी, जो मृगा कस्तूरी भूल, सूतो टाके पास, भरम ही वह दौड़ी ढूंढे जब ही पावे बास, भरम ही बलवंत सब में ईसहू के माई, जब भगत भगवत चिन्ह है भरम मन में जाई, सलिल को सब रंग तजिके एक रंग मिलाई, सूर जो है रंग त्यागे यहे भक्ति सुभाए। संदर्भ: प्रस्तुत पद में कवि का भक्त मन पीछे के अपने निरर्थक जन्मों पर ग्लानि करते हुए अपने ही भीतर मौजूद ईश्वर को पहचानने के लिए मन को उद्बुद्ध कर रहा है। व्याख्या: रे मन अपने को पहचान, संपूर्ण जीवन को तूने भटकते हुए खो दिया, अब भी कुछ तो समझ, हिरण कस्तूरी को भुला रहता है पर वह तो उसके पास ही रहती है, किंतु जैसे ही वह सुगंध पाता है भरमाया हुए उसे दौड़ कर ढूंढता है, यह भ्रम ही सबसे बलवान है, ब्रह्मा आदि देवताओं को भी माया ग्रसे हुए है, जब भक्त भगवान को पहचान लेता है तब उसके मन में भ्रम दूर हो जाता है, जल को और सारे रंग छोड़कर एक रंग में रंगना चाहिए, इसी प्रकार मन को भी अन्य सब आसक्तियां हटाकर एकमात्र भगवान के प्रेम में सरोवर कर देनी चाहिए। सूरदास जी कहते हैं कि भक्त का यही स्वभाव है कि वह दो रंग संसारा आसक्ति छोड़ देता है, केवल भगवान में ही लीन रहता है। काव्य सौंदर्य: आपू को पहचानी में अद्वैतवाद की छाया है, क्योंकि उपनिषद कहती है अयमात्मा ब्रह्म, सलिल ही माया है जो पल पल में अनेक रंग ग्रहण करती है। यह भाव कबीर में भी है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहरी चोलन, कंठ विषय को माल, महामोह के नूपुर बाजत, निंदा सबत रसाल, भरम भरियो मन भायो पखावर, चलत असंगित चाल, कृष्णा नाद करति घट भीतर, नाना विधि रे टाल, माया को कति फेंटा बांधियो, लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काछी दिखड़ाई, जलथल सुधि नहीं काल, सूर्यदास की सबे अविद्या, दूरी करो नंदलाल। संदर्भ: प्रस्तुत पद में कवि अपने विगत कर्मों पर पश्चाताप करते हुए अपने अज्ञान के विनाश के लिए आराध्य से निवेदन कर रहा है। व्याख्या: हे गोपाल, अब मैं बहुत नाच चुका हूँ, काम और क्रोध का जामा पहनकर, विषय की माला गले में डालकर, महामोह रूपी नुपुर बजाता हुआ, जिससे निंद्रा का रसमय शब्द निकलता है, नाचता रहा, भ्रम के भ्रमित मन की पखावज बना, कुसंग रूपी चाल में चलता रहा, अनेक प्रकार की टाल देती हुई कृष्णा हृदय के भीतर नाद कर रही है, कमर में माया का फेटा, कमर पट्ट बांध रखा है और ललाट पर लोभ का तिलक लगा लिया है, जल और स्थल में विविध स्वांग धारण कर, अनेक प्रकार के जन्म लेकर, कितने समय से, यह तो मुझे स्मरण नहीं, अनादिकाल से ही करोड़ों कलाएं मैंने भली प्रकार दिखलाई है। हे नंदलाल, अब तो सूर की सभी अविद्या को दूर करो दो। काव्य सौंदर्य: संपूर्ण पद में शांग रूपक की सुंदर नियोजना हुई है, दुष्ट जीवात्मा ही नर्तक का रूप धारण किए हुए है, नर्तक के नृत्य की तो कुछ उपयोगिता भी है और उसकी अवधि भी सीमित है, किंतु जीवात्मा का निरर्थक नृत्य अहर्निश हो रहा है। दूसरा: काम और क्रोध वस्त्र की तरह मनुष्य के शरीर से लिपटे हैं, गीता में कृष्ण ने कहा है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, वापट पीट की फहरानी, कर धरी चक्र चरण की धावनी, नहीं बिसरती वह बानी, रटते उतरी चलनी आतुर हुए, कचरज कील पटानी, मानो सिंह सैलते निकस्यो, महामत्त गज जानी, जिन गोपाल मेरो प्रण राख्यो, मेटी बेर की कानी, सोई सूर सहाय हमारे, निकट भये है आनी। संदर्भ: प्रस्तुत पद में कवि ने अपने आराध्य की एक अतीव भक्तिवत्सलता से परिपूर्ण स्थिति का चित्र मुग्ध होकर खींचा है और यह विश्वास व्यक्त किया है कि वही भक्तवत्सल भगवान हमारे भी सहायक हो गए हैं। प्रसिद्ध है कि महाभारत के घोर संग्राम में श्री कृष्ण ने अपने परम प्रिय अर्जुन की सुरक्षा के लिए महावीर भीष्म का प्रण झुठलाया था और भीष्म की भक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने पुनः भीम के वचन की रक्षा के लिए स्वयं अपना ही संकल्प तोड़ दिया था। व्याख्या: भीष्म के कठिन बाणों की चोट से की पीड़ा से व्याकुल होकर कृष्ण अपने प्रण उनके प्रण की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में शस्त्र ग्रहण न करने का अपने संकल्प भूलकर रथ के चाके को उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़ते हैं। इस स्थिति में कृष्ण के शरीर पर फहराते हुए पीताम्बर की शोभा बहुत ही भली लगती है। कवि का कहना है कि भगवान के हाथ में रथ का पहिया लेकर दौड़ने की मुद्रा और बालों में धूल की मिलावट तथा भीष्म की ओर आगे बढ़ने की आतुरता में भरी मनस्थिति का स्वरूप भूलता ही नहीं। श्री कृष्ण की यह आक्रामक मुद्रा ऐसे लगती है जैसे कोई सिंह मटवाले हाथी की आहट पाकर उस पर आक्रमण के लिए पर्वत की गुफा से निकलता है। सूरदास कहते हैं कि जिस भगवान कृष्ण ने वेद की मर्यादा को मिटाकर भक्त के प्रण की रक्षा की थी वही अब हमारी सहायता के लिए निकट आ गए हैं, अर्थात मुझे भी अपना आश्रय प्रदान कर दिए हैं। काव्य सौंदर्य: अलंकार, मानो सिंह से जानी में उत्प्रेक्षा है। दूसरा: श्रीमद् भागवत में ऐसा ही भाव वाला श्लोक है, युधि तुर्गरो जो विधु मृविक्सलक्चुर से लेकर कृष्ण आत्मा तक। इस पद में मृत्यु के समय भीष्म ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, खेलत नन्न आंगन गोविंद, निरख निरख जसुमति सुख पावती, बदन मनोहर इंदु, कति किंकिनी चंद्रिका मानिक, लटकन लटकट भाल, परम सुदेश कंठ के हरि नख, बिच बिच प्रज प्रवाल, कर पहुंची पाहिनी मैं नूपुर, तन राजत पटपीत, गुटरुनि चलत आज अजिर महाबिहरत, मुखमंडल नवनीत, सुर विचित्र चरित्र श्याम के, रसना कहत न आवे, बाल दशा अवलोक शकल मुनि, जागे बिरति बिसरावे। संदर्भ: प्रस्तुत पद में कवि श्री कृष्ण की बाल छवि का चित्र प्रस्तुत कर उनकी बाल चेष्टा और माता यशोदा के हृदय की प्रफुल्ल स्थिति का वर्णन कर रहा है। व्याख्या: कवि कहता है कि गोकुल में बाल कृष्ण नंद के आंगन में खेल रहे हैं, माता यशोदा स्वाभाविक रूप से खेलते हुए अपने पुत्र की मनोहर छवि को देख देख कर अत्यंत आह्लाद को प्राप्त कर रही है। बालक कृष्ण की कमर में छोटी छोटी घुंघरुओं की करधनी, मस्तक पर चंद्रमा के आकार का माणिक्य का आभूषण लटकता हुआ बड़ा भला लग रहा है। उनके गले में बाघ के नख का मूंगे के साथ गुठा हुआ सुंदर बगनगा, हाथ में पहुंची पैरों में छोटी पंजनी और शरीर पर पीला वस्त्र अत्यंत शोभित हो रहा है। मुख में मक्खन लपेटे हुए घुटनों के बल चल चल कर कृष्ण पूरे आंगन में सुखपूर्वक घूम रहे हैं। कवि सूरदास कहते हैं, कृष्ण का बाल चित्र इतना मोहक और अपूर्व है कि कुछ कहते नहीं बनता। वाणी उस शोभा का वर्णन करने में असमर्थ हो जाती है। भगवान की इस मोहक बाल्यावस्था की मनोरम स्थिति को देखकर सभी मुनियों का योग और वैराग्य भूल जाता है, अर्थात उनका भी मन इस बाल छवि पर मुग्ध हो जाता है। काव्य सौंदर्य अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश छेकानु प्रकाश रूपक। दूसरा, आलंबन के रूप वर्णन से वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। तीसरा, कृष्ण का लोक सुलभ रूप दर्शित है, इसलिए वह सबके लिए सहज है। वे केहरी नख ब्रज और प्रवाल जैसे लोक आभूषणों से विभूषित है। कहा लो बरनो सुंदरताई, खेलत कुवर कनक आंगन में नैन निरख छवि पाई। कुलही लसती श्री श्याम सुंदर के बहुविधि सुरंग बनाई। मानो नवधन ऊपर राजत मधवा धनुष चढ़ाई। अति सुदेश मृदु हरत चिकुर मन मोहन मुख बगड़ाई। मानो प्रगत कंज पर मंजुल अली अवली फिर आई। नील सेत अरुपीत लाल मणि लटकन भाल रुनाई। शनि गुरु असुर देव गुरु मिली मनु भौम सहित समुदाय। दूध दंत दुति कही न जाती कछु अद्भुत उपमा पाई। किलकत हसत दुरति प्रगतति मनु धनमय बिज्जु छपाई। खंडित वचन देत पूरन सुख अलप अलप जल पाई। घुटरुनि चलत रेणु तन मंदित सूरदास बलि जाई। संदर्भ, प्रस्तुत पद में कवि ने कृष्ण की बाल चेष्टाओं के अद्भुत सौंदर्य का उद्भावन किया है। व्याख्या, श्याम की सुंदरता का कहाँ तक वर्णन करूं। श्री नंद बाबा के स्वर्णमय आंगन में खेलते हुए कुंवर की शोभा को मैं अपने नेत्रों से देख पाया हूँ। अनेक प्रकार के उत्तम रंगों से बनी कुला श्याम सुंदर के मस्तक पर शोभा दे रही है, मानो नवीन मेघ के ऊपर इंद्रधनुष तनकर सुशोभित हो। मोहन के रूप के चारों ओर मुख के चारों ओर बिखरी हुई अत्यंत सुंदर और कोमल अलके ऐसी मनोहर लगती है मानो खिले हुए सुंदर कमल पर भौरों का झुंड घिर आया हो। ललाट पर नीली श्वेत पीली और लाल मनियों से बना लटकन ऐसा भाला लग रहा है मानो शनि शुक्र और बृहस्पति समुदाय बनाकर मंगल के साथ आ मिले हो। उनके दूध के दांतों की ज्योति का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। उसने अद्भुत उपमा पाली है। किलकारी लेकर हंसते समय वह ज्योति इस प्रकार छिपती और प्रकट होती है मानो बादलों में विद्युत की छटा हो। तनिक तनिक बोलते हुए उनके मुख से जो खंडित वाणी निकलती है वह पूर्ण सुख देती है। घुटनों के बल चल रहे शरीर ढूल से सुशोभित है। इस शोभा पर सूरदास बलिहारी हो जाता है। काव्य सौंदर्य अलंकार छेकानु प्रकाश कुलही लसती चढ़ाई में मौलिक और नवीन उत्प्रेक्षा अवतारणा हुई है। दूसरा, शनि देवगुरु और भौम आदि पौराणिक उपमान है। तीसरा, पद माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की नींव कोटि मनोज शोभा हरनी। भुज भुजंग सरोज नय ननी, बदन विधु जिते लड़नी। रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर दुरी डरनी। मंजु मेचक मृदुल तनु हनुहरत भूषण भरनी। मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरनी। चलत पद प्रतिबिंब मनी आंगन घुटरुवनी करनी। चलज संपुट सुभग छवि भरी लेत उर्जनु धरनी। पुण्य फल अनुभवति सुतही बिलोकी कै नंद घरनी। सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लड़खरनी। संदर्भ, प्रस्तुत पद में कवि ने श्री कृष्ण के बाल छवि का अनेक उपमाओं और प्रेक्षाओं की सहायता से वर्णन किया है। व्याख्या, श्रीहरि की बालोचित शोभा का वर्णन करता हूँ जो संपूर्ण सुखों की सीमा और करोड़ों कामदेव की शोभा को भी हरण करने वाली है। उनकी भुजाओं ने नागों को, नेत्रों ने कमलों को और मुख ने चंद्रमा की स्पर्धा में जीत लिया है, जिससे सांप बिलों में, कमल पानी में था, चंद्रमा आकाश में चले गए और अन्य उपमाएं भी भय से छिप गई है। कृष्ण का सुहावना श्याम वर्ण कोमल शरीर है और उसी के अनुकूल आभूषण और वस्त्र सजे हैं। मानो सुंदर श्रृंगार रस का बाल तरु अद्भुत फलों से फलवान हो रहा है। घुटनों और हाथों के सहारे मणिमय आंगन में चलते हुए चरणों का प्रतिबिंब वैसा जान पड़ा है मानो पृथ्वी कमलों के संपूर्ण डिब्बों में रखकर मनोहर शोभा को अपने हृदय में भर रही हो। श्री नंदरानी अपने पुत्र को देखकर अपने पुनों का यह फल ऐसा अनुभव कर रही है। सूरदास खिड़े में अपने स्वामी की किलकने की तथा लड़खड़ा कर गिरने की मनोहर छटा बस गई है। काव्य सौंदर्य अलंकार उत्प्रेक्षा अनुप्रास। दूसरा, भुज भुजंग धरणी में सूर्य की उपमा क्रीड़ा द्रष्टव्य है। तीसरा, मनोसुभग फरणी और चलत धरणी में कवि ने अनूठी कल्पना की है। सूर्य की सुंदर उत्प्रेक्षा सृष्टि का यह पर अन्यतम उदाहरण है। चौथा, किलकनी ललित लखड़णी में बाल चेष्टा का चित्रात्मक अंकन हुआ, इसमें ध्वन्यात्मक सौंदर्य भी निहित है। सखा कहत है श्याम खिसाने, आप ही बलक भये है ठाढ़े, अस्तुम कहा रिसाने, बीच ही बोल उठे हल धरटब, या के माए न बाप, हार जीत कछु नेकु न समुझत, लड़किन लावत पाप, आपुन हारी सखनी सो झगड़त, यह कही दियो पठाय, सूर श्याम उठी के चले रोई के, जननी पूछत ढाय। संदर्भ: प्रस्तुत पद में सूरदास ने खेल में बालकों के स्वाभाविक अमर्ष का चित्रण किया है। व्याख्या: सभी साथी कहते हैं कि अब कृष्ण क्रुद्ध होकर हमसे नाराज हो गए। वे कहते हैं, अरे तुम अपने आप ही बुरा भला कहते हुए हमसे अलग हो गए, भला इस प्रकार नाराज हो जाने का कारण ही क्या है। सखाओं की इस प्रकार की बात को बीच में ही तोड़कर बलराम जी बोल पड़ते हैं, या बिना माँ बाप का ऐसा ही है, या हार और जीत के नियम को थोड़ा भी समझता नहीं है और झूठे ही दूसरों को दोष देता है। तुम खेल में हार हो जाने पर भी व्यर्थ ही लड़कों से झगड़ते हो। इस प्रकार कहकर बलराम ने कृष्ण को वहां से घर जाने के लिए हटा दिया। बलराम के इस प्रकार कहने पर रोते हुए कृष्ण वहां से चल दिए। कृष्ण के रोने की आवाज को सुनकर माता यशोदा घर से दौड़कर उससे रोने का कारण पूछती है। काव्य सुंदर: या के माई न बाप में आध्यात्मिक अर्थ भी निहित है। भगवान के सचमुच न कोई माँ भाया न बाप, वे तो संपूर्ण जगत के माता और पिता है। दूसरा: इस पद में कृष्ण के बाल सुलभ उत्तेजक स्वभाव का सहज चित्रण है। कुंवर जल लोचन भरी भरी लेट, बालक बदन बिलोकी जसोदा, कटरिस करती अचेत, छोड़ी उडरते दुसह दावड़ी, दाढ़ी कथन कर बेट, करी धो रही तो ही क्यों करी आवे, शिशु पर तामस एत, मुख आंसू अरु माखन कनुका, निरख नयन छवि देत, मानो श्रवत सुधाने थी मोटी, उरुगन अवली समेत, ना जानो कि ही पुण्य प्रगट भई, एही ब्रज नंद निकेत, तनमन धन्यो छावरी कीजे सूर श्याम के हे। संदर्भ: प्रस्तुत पद में माँ के वात्सल्यपूर्ण हृदय की मार्मिक भावनाओं का बड़ा सुरुचिपूर्ण वर्णन हुआ है। व्याख्या: अपने ही ऊधम से माँ का कोप भाजन बनकर रस्सी में बंध जाने के बाद कृष्ण अपनी आकृति करुणापूर्ण बनाकर आंखों में आंसू भर लेते हैं। कृष्ण का ऐसा अवसादपूर्ण भोला मुख देकर माँ के हृदय का सारा क्रोध दूर हो गया। उन्होंने कृष्ण के कमर में बंधी हुई मजबूत रस्सी को छोड़कर अपने हाथ का कठोर मेद दूर फेंक दिया। वे पछताते हुए अपनी मन को कोसती, अरे निष्ठुर, तूने इतने छोटे बच्चे पर इस प्रकार का क्रोध क्यों आता है? आंखों से निकलकर मुंह का बिखरा हुआ आंसू, फूटा हुआ मक्खन ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा मोती और ताराओं की वर्षा कर रहा हो। कवि विस्मय व्यक्त करते हुए नंद यशोदा के प्रभूत पुण्य की प्रशंसा करते हुए कहता है, सचमुच यशोदा बड़ी भाग्यवान है जो कृष्ण जैसा बालक उनके घर पैदा हुआ है। सूरदास कहते हैं, कृष्ण की मनोहर छवि के ऊपर सर्वस्व निसावर करने वाले को मन विवश हो उठता है। काव्य सौंदर्य: पहला, अलंकार बालक बदन बिलोकी में छेकानु प्रकाश और भारी भरी में पुनरुक्ति प्रकाश, मानो से समेत में उत्प्रेक्षा है। दूसरा, यह पद सूर के भाषा लालित्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। तीसरा, गायों के गोठ को ब्रज कहते हैं, ब्रज में चरवाहे ही पैदा होते, उसमें श्री कृष्ण का प्रकट होना सचमुच किसी पुण्य का परिणाम है। माधो मोहि करो वृंदावन रेणु, जिन्ही चरण डोलत नंद नंदन, दिन प्रीति बन बन चारत धेनु, कहा भयो यह देव देह धरी, अरु ऊंचे पद पाए एनु, सब जीवन ले उड़र माझ प्रभु, महाप्रलय जल करत हो सोनु, हम ते धन्य सदा वै तृंद्रुम, बालक बच्छ विषान रुबेनु, सूर श्याम जिनके संग डोलत, हसी बोलत मथि पीवुट फेनु। संदर्भ: प्रस्तुत पद में कवि ने अपने आराध्य के साहचर्य सुख की अनिवार्य लालसा को व्यक्त करते हुए अपने को वृंदावन की धूली बनाने का प्रभु से निवेदन किया है। व्याख्या: सूरदास कहते हैं, हे प्रभु, आप जहाँ पर प्रतिदिन गाय चराते हुए विचरण करते रहते हैं, मुझे उसी पुण्य भूमि वृंदावन की धूली बना दीजिए। तुम्हारे साहचर्य सुख के बिना देवता का शरीर ऊंचा पद तथा सुंदर भवन भी पाने से क्या फायदा। सूरदास कहते हैं, ये वही गोपाल है जो महाप्रलय के समय अपने में सभी जीवों को समाहित कर उस प्रलय पयोधि में सुखपूर्वक शयन करते हैं। सूरदास का मत है, हमसे जो वृंदावन के वे घास पात और पेड़ पौधे, बाजे मुरली, गायों के बछड़े और गोपों के बालक ही भाग्यवान है, इसलिए कि उनको भगवान का निरंतर साहचर्य प्राप्त है। उनके साथ भगवान हंसते हुए और घूमते हैं और दही मटकर टक पीते हैं। काव्य सौंदर्य: इस पद में सूर की कृष्ण के प्रति अन्य भक्ति भावना और तादात्म्य की आकांक्षा व्यक्त हुई है। रसखान के मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन वाली सवैया में भी यही भाव व्यक्त हुआ है। मुरली तो गोपाल ही भावती, सुंदरी सखी यद्यपि नंद नंदन नंद ही नाना भांति नचावती, राखती एक पाए ठाढ़ो करी अति अधिकारी जनावती, कोमल अंग आपू आज्ञा गुरु कति टेढ़ी हो जावती, अति आधीन सुजान कनोरे गिरधर नारी नवावती, आपुन पौढ़ी अधर शेज्या पर करशो पद पलुटावती, भ्रिकुटि कुटिल फड़क नाशापुट हम पै कोपी कुपावती, सूर प्रसन्न जानी एकोचिन अधर सुशीष दुलावती। संदर्भ: प्रस्तुत पद में गोपियों की सौपत्निक भावना का वर्णन हुआ है। मुरली को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अत्यधिक प्रेम किए जाने से गोपियों के हृदय में उसके प्रति नारी सुलभ दाह का पाप पैदा हो गया। गोपियों की सारी झुंझलाहट पर ही केंद्रित हो जाती है और वे उसे बुरा भुला कहने लगती है। व्याख्या, गोपियां कहती है, हे सखी, देखो यह मुरली कृष्ण की नाना प्रकार से कष्ट देती है, उसकी दुर्दशा करती है, फिर भी देखो कितनी अच्छी लगती है। देखो यह कृष्ण के ऊपर अपना अधिकार प्रमाणित करने के लिए उन्हें एक पैर पर खड़ा रखती है। देखो तो एक कोर उनका शरीर वैसे ही कोमल है, फिर भी यह मौसरी उनसे कठोर आदेशों का पालन कराती है, जिससे कृष्ण की कमर टेढ़ी हो जाती है। यह मुरली अच्छे भले कृष्ण को अपने अधिकार में लेकर उन्हें एहसानमंद बनाती है और उनकी गर्दन टेढ़ी करती है। यह तो उनके अधर रूपी कोमल सैया पर लेटकर उनके हाथों को अपना पैर दबाती है। इतना ही नहीं, यह अपने अधिकार को जताने के लिए कृष्ण से हमारे ऊपर क्रोध भी कराती है। देखो कृष्ण की भ्रुकुटी क्रोध के कारण टेढ़ी हो जाती है और नाक फड़कने लगती है। सूरदास कहते हैं कि एक क्षण भी कृष्ण को प्रसन्न देखकर वह उनसे होठ और शीश दुलवाने लगती है। काव्य सौंदर्य, पहला अलंकार अनुप्रास। गिरिधर का प्रयोग साभिप्राय होने के कारण पारिकरंकाकुर। दूसरा, इसमें गोपियों का शापन्य भाव, कृष्ण की मुरली वादन की मुद्रा और उसकी त्रिभंगी छवि अभिमंजित हुई है। संयोग श्रृंगार में ऋषिया संचारी भाव है। तीसरा, चित्रात्मक भाषा में गोपी की भाव अभिव्यंजना उत्कृष्ट बन पड़ी है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन बचक्रम नंदनंदन सो उड़, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सौतु, कांध कांध जकड़ी, सुनत ही जोग लगते ऐशो अली, जो करोई ककड़ी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखा सुनी न करी, यह तो सूर्य तिन्हे ले दे दीजे, जिनके मन चकड़ी। संदर्भ, इस पद में कवि ने अपने आराध्य के प्रति अपने अनन्य भक्ति भावना का परिचय दिया है। व्याख्या, सूरदास कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, अर्थात एकमात्र अधिक आश्रय है। मन वचन और कर्म से यह हृदय नंद नंदन को दृढ़तापूर्वक पकड़े रखे है। जागते हुए और सोते हुए और सपने में भी हमेशा यह कृष्ण कृष्ण रटता रहता है। योग तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे कड़वी लकड़ी हो। गोपियां कहती है कि उद्भव उद्धव, योग उन्हें ले जाकर दो जिनका मन ज्ञान के क्षेत्र में स्थिर हो। हमारा मन तो कृष्ण के वियोग में विक्षिप्त है। काव्य सौंदर्य अलंकार, हमारे हरिहारिल में मृत्यु अनुप्रास है। दूसरा, हारिल की लकड़ी और करुई ककड़ी लोक उपमान है। तीसरा, सुनत ही करुई ककड़ी में दृष्टांत अलंकार है। चौथा, यह पद कृष्ण के प्रति गोपी के अनन्य प्रेम की अर्थ व्यंजना से भी युक्त है। खंजन नयन रूप रसमाते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, बसे कहूँ कोई बात सखी, कह रहे यहाँ कही नाते, सोई संज्ञा देखित और आशी, बिकल उदास कलाते, चली चली जात निकट श्रवणी के, कति टांकट फंदाते, सूर्यदास अंजन गुण अटके, नतरु कबे उड़ी जाते। संदर्भ, प्रस्तुत पद में विरहनी ब्रजबाला की विरह की आकुलता को उसी के स्वागत कथन के माध्यम से व्यंजित किया गया है। व्याख्या, विरह व्यतीत ब्रजबाला अपनी सखी से कहती है, ये खंजन रूपी नयन कृष्ण की मनोहर रूप छवि के रस में पक्कर मतवाले हो रहे हैं। इन्हें अत्यंत सुंदर चंचल और नुकीले नेत्र मादकता के कारण पलक रूपी पिंजरे में रुक नहीं पा रहे हैं। ये सखी, यह भी क्या कोई बात है कि कृष्ण के अन्यत्र चले जाने के बाद भी ये यहाँ ठहरे हुए हैं? यह तो प्रेम के सिद्धांत के प्रतिकूल बात है। इनकी तो संज्ञा वही है, अर्थात आकार के कारण ही ये अब भी खंजन कहे जा रहे हैं, किंतु इनकी चाल एकदम बेढंगी हो गई है, अर्थात इनका आवरण अब नाम के अनुकूल नहीं रहा। इनके खंजल नाम की तभी सार्थकता होती जबकि ये कृष्ण के साथी उड़ गए होते। ये बार बार कानों के निकट जाकर कर्ण फूलों को लांघना चाहते हैं, अर्थात व्याकुलता में ये इधर उधर दौड़ रहे हैं। सूरदास कहते हैं, ये मतवाली आंखें केवल कृष्ण की अंजनयुक्त आंखों के आकर्षण गुण के कारण ही, अर्थात उन्हें देखने की लालसा के लोभवश ही रुकी हुई है, नहीं तो अब तक कभी उड़ गई होती। काव्य सौंदर्य, पहला अलंकार, खंजन नयन और पल पिंजरा में रूपक और रूप रस में छेकानुप्रकार। दूसरा, कहते हैं यह पद सूर की अंतिम पद है जिसे उन्होंने अपनी असाध्य मृत्यु के समय गुरुपुत्र स्वामी विट्ठलनाथ के समक्ष सुनाया था। तीसरा, अंजन गुण में स्लिक्त रूपक है, यह पद सूर की अटल भाव सुषमा का अन्यतम उदाहरण है। कुबिजा नहीं तुम देखी है, दधि बेचन जब जाति मधुपुरी, मई नीके करी पेखी है, महल निकट माली की बेटी, देखत जिही नर नारी हंसे, कोटि बार पीतरी जो डाहो, कोटि बार जो कहा कशे, सुनी टेटा ही सुंदरी किन्ही, आपु भये टाको राजी, सुर मिले मन जाही जाही सो, टाको कहा करे काजी। संदर्भ, प्रस्तुत पद में कुब्जा का गोपियों द्वारा उपहास और प्रेमी की स्वतंत्रता का व्यंग्यात्मक आख्यान कराकर उनके हृदय की सौपत्नी की ईर्ष्या और कृष्ण के प्रति प्रेम की अन्यता को व्याख्यायित किया गया है। व्याख्या। गोपियां आपस में कहती है, हे सखी, तू कुब्जा को नहीं जानती? अरे मैं तो जब मथुरा में रही बेचने जाती थी तो उसे अच्छी प्रकार से बराबर देखती थी। अरे सखी, यह कुब्जा नाम की सुंदरी वही महल के निकट रहने वाली माली की बेटी है, जिसे देखकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। गोपियां कहती है कि लोग कहते हैं कुब्जा सुंदरी हो गई है, किंतु क्या यह बात विश्वास के योग्य है? देखो, यदि पीतल के कितनहू बार आग में टपाकर खराद पर चढ़ाया जाए तो वह सोना हो जाएगा? नहीं, अर्थात किसी में भी अमूल परिवर्तन होना नितांत असंभव है। कुब्जा सुंदरी क्या हो गई होगी? उससे उसका मन पट गया होगा, और यदि किसी से किसी का मन पट जाए उसे भला प्रेम करने में साधारण व्यक्ति क्या, कोई न्यायिक भी नहीं रोक सकता। काव्य सौंदर्य। गोपी का वचन वैदग्ध सराहनीय है। दूसरा, कोटीबाड़ी से कहा कशे में मुहावरेदार अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा, मिले मन से काजी में सूर ने प्रचलित लोकोक्ति मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी का सुंदर सन्निवेश किया है। पिया पुनु नागिन कारी रात, जो कहूँ जामिनी उवती जुनहैया दसी उल्टी है जात, जंत्र न फुरत मंत्र नहीं लागत प्रीति सिरानी जात, सूर श्याम बिनु विकल बिरहनी मुड़ी मुड़ी लहरे खात। संदर्भ, प्रस्तुत पद में कृष्ण वियोग में विकल गोपियों की दुर्वस्था का चित्रण किया गया है। व्याख्या, कवि कहता है कि प्रिय के वियोग में काली अंधेरी और सूनी रात विरहनी को विषैली सर्पनी की तरह काटने लगती है। यदि रात में स्वच्छ चांदनी उगाती है तब तो उसकी दशा और भी दर्दनाक हो जाती है, जैसे सर्पनी डसकर उलझ जाए, अर्थात उसकी वेदना चरम सीमा को छू लेती है। इस सर्पनी के विष का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि जंत्र मंत्र सभी का प्रयोग व्यर्थ चला जाता है और गोपियों का प्रेम भी नष्ट हो जाता है। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण के वियोग में विक्षिप्त विरहनियां बार बार लहरें खा रही है, अर्थात वियोग की वेदना का ज्वार बराबर उन्हें व्यथित करता रहा है। काव्य सौंदर्य। रात पर नागिन का आरोप होने से रूपक अलंकार है, मुड़ी मुड़ी में पुनरुक्ति प्रकाश है। दूसरा, विरह की अंतिम अवस्था मरण का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण हुआ है। तीसरा, प्रीति सिरानी जात, गोपी को प्राण नष्ट होने की कोई चिंता नहीं, पीड़ा तो इस बात की है कि प्राण के साथ साथ उसका कृष्ण के प्रति प्रेम भाव भी छिन्नतर होता जा रहा है। चौथा, माधुर्य गुण विशिष्ट शब्दों की पदसैया से गोपी की विरहानुभूति अत्यंत करुण और मार्मिक हो गई है। देखित चहु दिसी तय घन घोड़े, मानो मत्त मदन के हठियन बल करी बंधन तोड़े, श्याम सुभग तन चुवत गंदमद बरसत थोड़े थोड़े, रुकत न पवन महावतहु में ते मुड़त न अंकुश मोड़े, मनो निकस बग पंक्ति दंत उड़ अवधि सरोवर फोड़े, बिनु बेला बल निकस नयन जल कुंच कुंच की बंद बोड़े, तब तिही समय आनी एरावती ब्रजपाती सो कर जोड़े, अब सुनी सूर कान के हरि बिनु गरत गात जैसे ओड़े। संदर्भ, विरह मधुर प्राणियों के लिए तो प्रत्येक क्षण ही पीड़ादायक होता है, हर ऋतु दुखदायक होती है, किंतु वसंत और वर्षा में उनके हृदय के दाह और अधिक बढ़ जाता है। प्रस्तुत पर्व में वर्षा की उद्दीपन से विरहनियों के घोर संताप का वर्णन किया गया है। व्याख्या, चारों ओर घनघोर बादल इन भांति दिखाई पड़ते हैं कि मानो कामदेव के मतवाले और हाथियों से बलपूर्वक अपने बंधन तोड़ डाले हैं, उनका सुंदर शरीर काला हो गया है। वे थोड़ी थोड़ी इस भांति वर्षा करते हैं जैसे उसके गंध स्थल से मद टपक रहा हो। वे पवन रूपी महावत के अंकुश मारकर मोड़ने पर भी न मुड़ते हैं और न रुकते हैं। बगुलों की पंक्ति की ही मानो उनके दांत है जो सरोवर रूपी उनके वक्षस्थल की सीमा फोड़कर बाहर निकल आए। अस्तु, बिना समय के ही बलपूर्वक नेत्रों का जल निकालकर वक्षस्थल पर बनी कंचुकी के बंधनों को डुबा रहा है। तब तो एरावत के स्वामी इंद्र ने आकर बजराज श्याम सुंदर के हाथ जोड़े थे, किंतु अब सुनो, कन्हैया रूपी सिंह के बिना हमारा शरीर इतना गल जाता है जैसे ओले गलते हो। काव्य सौंदर्य। अलंकार, घनघोरे में छेकानुप्रकाश और थोड़े थोड़े में पुनरुक्ति प्रकाश, संपूर्ण पर्व शांग रूपक है। मानो मत से तोड़े और मनो निकसी से फोड़े में उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा है। दूसरा, वियोग दशा में पावस विरहनी के लिए विरोहदीपन का कार्य करता है। बादलों की उमड़ घुमड़ और गर्जन कामदेव की सेना बन गई है। वस्तु चित्रण और अनुभूति के अभिव्यंजना दोनों दृष्टि से यह पद अद्भुत है। तीसरा, तबती ही जोड़े में कृष्ण द्वारा इंद्र के गर्भहनन का पौराणिक कथा संदर्भ। को माई बरजेरी या चंदही अति ही क्रोध करत है हम पे कुमुदनी कुल आनंदही, कहा कहो वर्षा रवि तमचुर कमल बलाहक कारे, चलत न चपल रहत ठिड़के रथ बिरहनी के चंचारे, निंदति शैल उदधि पनंग को श्रीपति कमठ कठोर ही, डेट अशीष जरा देवी को राहु केतु किन जो रही, जो जलहीन मीन तलफती ऐसी गति ब्रज बालही, सूरदास अब आनी मिलावहु मोहन मदन गोपाली। काव्य सौंदर्य। अलंकार, जो जलहीन ब्रजबालही में दृष्टांत, मिला बहु मोहन मनन में मृत्यानुकाश, विरही की प्रलाप दशा का वर्णन है। चंद्रमा उद्दीपन है जो कुमुन्नियों का प्रेमी है। चंद्र कुमुन्नी के प्रणय को देखकर विरह विदग्धा गोपी को कृष्ण की याद सताने लगती है या उन्मादग्रस्त हो जाती है। यह उन्माद संचारी है। गोपी चंद्रमा के उद्भव स्थल समुद्र और उसके संबंधियों की निंदा करती है और उसके शत्रुओं की प्रशंसा करती है। उधो तुम ब्रज की दशा विचारो, तापाछे यह सिद्धि आपनी योग कथा विस्तारो, जाका कारण तुम पथे माधो, सो सोचो जिय माही, केतिक बीच बिरह परमारथ जानत हो किधो नाही, तुम परवीन चतुर कहियत हो, संतन निकट रहत हो, जल मूरंत अवलंब फेर को, फिर कहा गहत हो, वह मुस्कान मनोहर चितवनी, कैसे उड़ते तारो, जोग जुक्ति अरु मुक्ति परम निधि, वा मुरली परवारो, जिही उड़कमल नयन तू बसत है, तिही निर्गुण क्यों आवे, सूरदास भजन बहाओ, जाहि दूसरी भावे। संदर्भ: उद्भव अब विरह व्याकुल गोपियों की स्थिति का ख्याल किए बिना ही अपने ज्ञान वैराग्य की घूटी उन्हें पिलाने लगते हैं तो गोपियों को उनकी मूर्खता पर तरस आती है। वे नम्रतापूर्वक कहती है कि पहले आप ब्रज की स्थिति से तो अवगत हो लीजिए, फिर बाद में अपना ज्ञान कहिएगा, क्योंकि उपदेशक को पहले पात्र के बारे में जानकारी भली प्रकार कर लेना चाहिए कि वह उपदेश ग्रहण करने लायक है कि नहीं। व्याख्या: गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, पहले तुम ब्रज के लोगों की स्थिति विचार कर लो, उसके बाद अपने योग की कथा का विवेचन करो, अर्थात तनिक धैर्यपूर्वक सोचो कि क्या हमारी परिस्थिति के अनुकूल आपकी ज्ञान चर्चा है। उद्धव, जिस कार्य को लेकर कृष्ण ने हमारे पास भेजा है उसका भी अपने हृदय में ध्यान करो। क्या तुमको व्यवहार का साधारण ज्ञान भी नहीं है? परमार्थ और प्रिय वियोग की पीड़ा, अनुभूति की दो कोटियों के बीच कितना अंतर है, इसे भी तो सोचो। तुमको लोग प्रवीण और चतुर कहते हैं तथा यह भी कहते हैं कि तुम हमेशा संतों के बीच रहते हो, फिर भी तुम जल में डूबते हुए व्यक्ति को जल के फेर का सहारा बताने जैसी मूर्खता क्यों करते हो? अर्थात हम कृष्ण के वियोग रूपी जलराशि में डूबी रही है और तुम फेर संत इस योग को हमें अवलंब बता रहे हो, जो अज्ञानतापूर्वक है। गोपियां बड़े सीधे ढंग से कहती है, हे उद्धव, तू ही बताओ कि हम कृष्ण की मधुर मुस्कान मोहक चितवन को हृदय से कैसे निकाल दें? हम तो तुम्हारी योग शक्ति और मुक्ति की परम धन को उसी वंशी पर निछावर करते हैं जिस हृदय में कमल से नेत्र वाले कृष्ण का निवास है, उसमें निर्गुण कैसे आ सकता है? सूर कहते हैं कि गोपियां कहती है, उद्धव, हमारे हृदय में तो भक्ति की वह वेगवती धारा बह रही है जिसे दूसरे भी पसंद आते हैं, अर्थात उस धारा में कोई दूसरे विचार का व्यक्ति भी आता है, वह भी उसके प्रवाह में बह चलता है। काव्य सौंदर्य: अलंकार कमल नयन में रूपक। दूसरा: जल मूरत से गाहत हो में मुहावरे का प्रयोग है। तीसरा: इस पद में गोपियों की कृष्ण के प्रति अन्यता भक्ति व्यंजित हुई है। हमको सपने ही मई सोच, जा दिन में निछुड़े नंद नंदन, ता दिन तय यह पोच, मनु गोपाल आए मेरे घर, हंसी करी भुजा गही, कहा करो बैरनी भई, निंदिया निमिष न और रही, जो चकई प्रतिबिंब देख के आनंदी प्रिय जानी, सूर पवन विष निठुर विधाता, चपल कियो जल आनी। संदर्भ: यह पद विरह विदग्धा राधा का स्वागत कथन है, इनमें श्री कृष्ण के स्वप्न में मिलन और तत्पश्चात वियोग दुख का वर्णन है। व्याख्या: राधा अपनी सखी से कहती है, हे सखी, जिस दिन से कृष्ण का वियोग हुआ है उस दिन से हमें स्वप्न में भी वियोग का ताप नहीं छोड़ता, लगा ही रहता है। मैंने आज स्वप्न में देखा कि जैसे कृष्ण आज मेरे घर आए हैं और हंसकर मेरी बाह पकड़ ली है, लेकिन अपने दुर्भाग्य को क्या कहूँ, यह निगोड़ी नींद ठीक उसी समय टूट पड़ती है। यह एक पल भी और नहीं बनी रही जिससे मुझे मिलन का वह दुर्लभ सुख मिल सकता। जिस प्रकार चकवी रात में जल में अपनी ही प्रतिछाया देखकर उसे अपना प्रियतम समझ आनंदित होती है, किंतु निष्ठुर विधाता पवन के बहाने जल को चंचल बनाकर उसे उस सुख से वंचित कर देता है, उसी प्रकार मेरी नींद भी तोड़कर उसने स्वप्न सुख से मुझे वंचित कर दिया। काव्य सौंदर्य: अलंकार निंदिया निमिष न मृत्यानुप्रास, जो चकई से आनी में दृष्टांत। दूसरा: स्वप्न में प्रिय मिलन और पुनः विछोह का अनूठा चित्रण है। तीसरा: सपनेहू में सोच में गोपी की अहर्निश विरह कथा और तथा उसके जीवन की विडम्बनाग्रस्त स्थिति की ओर संकेत हुआ है। मधुकर हम न हो ही वे बेलो, जिनको तुम तजी भजत प्रीति बिनु करत कुसुम रस केलो, बाड़े ते बलबीर बढ़ाई पोसी प्याई पानी, बिन प्रिय परम प्रात उठि फूलत होत सदा हित हानि, ये बल्ली बिहरत वृंदावन अरुज श्याम तमलाही, प्रेम पुष्प रज बास हमारे बिलसत माधुप गोपाल ही, जोग समीर धीर नहीं डोलत रूप डार दिगलागी, सूर पराग नतजत हिये ते कमल नयन अनुरागी। संदर्भ: इस पद में आत्मकथन के माध्यम से गोपियों के प्रेम की दृढ़ता और सात्विकता तथा एक निष्ठा का अनूठा चित्रण किया गया है। व्याख्या: भ्रमण के माध्यम से गोपियां उद्धव को लक्ष्य करके कहती है, हे उद्धव, हम वे लताएं नहीं है जिन्हें तुम छल में प्रीति से लुभाकर उसका रसपान कर उड़ जाते हो, हम तो ऐसी बेले हैं जिन्हें कृष्ण के बचपन से ही उसके प्रेम रूपी जल से सींच कर बढ़ाया है। ये तो प्रातःकाल प्रिय स्पर्श के बिना फूलना भी पसंद नहीं करती। ये लताएं वृंदावन में श्याम रूपी टमाल से लिपट कर ही विहार करती है और हमारे प्रेम रूपा मधुकन के सुंदर वास से गोपाल रूपी भौरा हमेशा प्रसन्नतापूर्वक विलास करता है। योग रूपी पवन इन बेलों को अपने आघात से विचलित करने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूप की डालों से भली प्रकार चिपकी हुई है और इनकी परागकोश कमल नयन कृष्ण के अतिरिक्त दूसरों के लिए खुलता ही नहीं। अर्थात गोपियां कहती है कि हमारे हृदय के समस्त स्नेह की संचित पूंजी केवल कृष्ण को ही समर्पित है, दूसरे को उसका थोड़ा अंश भी नहीं मिल सकता। काव्य सौंदर्य अलंकार पूरे पद में शंग रूपक की बड़ी सुंदर नियोजना हुई है। पौसी प्यासी प्याई पानी और बल्ली बिहरत पिंडावन में वृत्यानुप्रास की छटा है। दूसरा, ये बल्ली से तमालही के समान एक स्थान पर सूर गोपियों से कहलाते हैं। लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे। तीसरा, कुछ पौधे अपने प्रिय के स्पर्श से पुष्पित होते हैं, गोपियां भी कृष्ण के स्नेह स्पर्श से पुलकित होती है। फूलत श्रिष्ट पद है जिसके दो अर्थ है, फूलना और प्रसन्न होना। उधो बिरहु प्रेमु करे जो बिनु पुट पट गहे न रंगही पुट गही रसही पड़े जो आवो घट दहत अपल तनु तो पुनि अमय भरे जो धीर बीज देह अंकुर चिरी तो शत फरनी फड़े जो सर सहत सुभत सम्मुख रण तो रवि रथ ही सरे सुर गोपाल प्रेम फट चलते कौ न दुख ही डरे। संदर्भ, प्रस्तुत पद में गोपियां विरह के दुख को भी प्रेम की परिपक्वता में सहयोगी मानती है। व्याख्या, गोपियां कहती है कि हे उद्धव, ऐसा मत समझो कि प्रिय के दूर चले जाने से हमारे प्रेम में भी किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है। हम तो विरह में भी प्रेम करना बतलाता है, अर्थात साहचर्य के अभाव में दुख की अनुभूति के बावजूद भी ध्यान हमेशा प्रिय में ही लगा रहता है। विरह में स्मरण का अवसर और अधिक ही रहता है। देखो, कपड़ा बिना तरल घोल में डूबे रंग ग्रहण ही नहीं करता, और जब वह उस घोल में डूब जाता है तो सारा रंग कपड़े में चला आता है। घड़ा पहले अपना शरीर अग्नि में जलाता है, तब आकर वह अमृत धारण करने की योग्यता प्राप्त करता है। जब बीज अपना पेट फाड़ कर अंकुर निकालता है, तभी वह सैकड़ों फल लगाने वाला वृक्ष बनता है। जब प्रारंभ में वीर धैर्यपूर्वक अपने वक्षस्थल परमाणुओं के आघात को सहता है, तब कहीं उसके पराक्रम के समक्ष रवि का रथ भी पीछे छूट जाता है, अर्थात वह सूर्य से भी तेजस्वी हो जाता है। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, कृष्ण के प्रेम के रास्ते पर चलने में कोई भी दुखों का भय नहीं मानता। काव्य सौंदर्य अलंकार संपूर्ण पद में उदाहरण अलंकार है। प्रेम पथ में रूपक, रवि रथही में छेकानुप्रास और सत्सहत सुभत में वृत्यानुप्रास। दूसरा, प्रेम का पथ कंटका कीर्ण है, इसलिए मीरा कहती है, जो मैं ऐसी जानती रे प्रीत किए दुख होए नगर ढिढोरा पीटती प्रीत करे जनी कोय। इस दृष्टि से गोपियां अधिक साहसी और धैर्ययुक्त प्रतीत होती है। योग ठगोड़ी ब्रजना बिके ही मूड़ी के पातिनी के बदले को मुक्ता हल दे है यह व्यापार तुम्हारी ऊधो ऐसे ही धरियो रे है जिन पेटे ले आए ऊधो ती नहीं के पेट समय है डाक छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुखे है गुण करी मोही सूर सांवरे को निर्गन निमे है। संदर्भ, प्रस्तुत पर में गोपियां अपने श्रस प्रेम के समक्ष रुक्ष ज्ञान को महत्वहीन समझती है। व्याख्या, गोपियां कहती है हे उद्धव, तुम्हारी योग को ठगने वाली वस्तु इस ब्रज में नहीं बिकेगी, इसे कोई नहीं खरीदेगा। भला बताओ, मूली की पत्ती के समान साधारण वस्तु को कौन ऐसा पागल है जो मोतियों के बदले खरीदेगा। तुम्हारा यह व्यापार जैसा का तैसा रखा रहेगा, तुम्हारा यह सोना जहां से खरीदा गया है वहीं वापस हो सकता है, अर्थात यह अनुपयोगी वस्तु की भांति लौटा देने की योग्य है। भला जो व्यक्ति किशमिश जैसी सुस्वादु वस्तु खा चुका हो वह टीटा नीम का फल क्यों खाने जाएगा। गोपियां कहती है, हमें तो कृष्ण ने अपने गुणों से ही मोल लिया है, इस निर्गुण अर्थात व्यर्थ की चीज को लेकर कौन निर्वाह करेगा। काव्य सौंदर्य अलंकार मूड़ी के देह में दृष्टांत, गोपीजन सुलभ यह लोक दृष्टांत बड़ा सटीक है। श्याम सखी कारेहू मैं कारे 300 प्रीति कहा कही कीजे मारग छाड़ी सिधारे लोक चतुर्दश विभव कहत है पदम पत्र जल न्यारे शरवर त्याग विहंग उड़े जो फिरी पाछे न निहारे तबचित चोरी भोरी ब्रजबाशिन प्रेम नेम ब्रज तारे ले शरबस नहीं मिले सूर प्रभु कहियत कुटिल बिचारे। संदर्भ, प्रस्तुत पद में गोपियां कृष्ण की मिथ्याचारी स्वभाव को प्रकट कर उनका उपहास कर रही है। व्याख्या, कोई गोपी दूसरी से कहती है कि हे सखी, कृष्ण तो कालों से भी काले अर्थात झूठे हैं, उनका हृदय बहुत कुटिल है, उनसे भला कोई प्रेम क्या कर सकता है, वे तो रास्ता ही छोड़कर भाग गए, सारा संसार उनके वैभव की प्रशंसा करता है किंतु वे किसी से संबंध ही नहीं रखते। देखो, जब पक्षी तालाब से जल पीकर उड़ते हैं तो फिर मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखते, ये ब्रजबालाओं के नियम, ब्रज को और उनका हृदय ही चुरा कर टुरवा दिए हैं। उन्होंने हमारा सर्वस्व ले लिया और अब लौटने की सोचते भी नहीं, अतः उनको कुटिल ही कहना चाहिए। काव्य सौंदर्य पहला, अलंकार चित्त चोरी भोरी प्रेम नेम और श्याम सखी में छेकानुप्रकाश तथा सरोवर त्यागी से निहारे में दृष्टांत। दूसरा, यहाँ प्रेम में कृष्ण की निराशक्ति और गोपियों की परमाशक्ति बताई गई है। प्रेम नेम व्रत में चीज हरण का संकेत है। गोपियां कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए मुंह अंधेरे यमुना में स्नान करती थी। कृष्ण ने उन्हें इस व्रत से विरक्त कर दिया था। बिरही कहलो आपू संभारे जबते गंग पड़ी हरि पद ले बहिबो नाही निवारे नयनन ते रवि बिछुड़ी भंवल रहे शशि अजहू तन गारे नाभि ते बिछड़ो उमल कंत भय सिंधु भय जड़ी छाड़े वैन ते बिछुड़ी बानी अवधि भई पिधी को कौन निवारे सूर्यदास सब अंग ते बिछुड़ी के ही विद्या उपचारे। संदर्भ, प्रस्तुत पद में गोपियां वियोग के अवश्यंभावी परिणाम को रेखांकित कर रही है। व्याख्या, गोपियां कहती है, हे उद्धव, अपने प्रिय से अलग हुआ व्यक्ति अपने को कहाँ तक संभाल सकता है। देखो, जब से गंगा विष्णु के शरण से अलग हुई उनका बहना रुका ही नहीं। ब्रह्म की आंखों से बिछुड़कर सूर्य आज भी चक्कर लगाता है और चंद्रमा मारे दुख से गला जाता है। ब्रह्मा की नाभि से अलग होने के कारण कमल कांटा हो गया और सागर अपने प्रिय के विरह की अग्नि में जलकर खाड़ा हो गया। और जब विष्णु की जिह्वा से अलग होकर सरस्वती भी भ्रष्ट हो गई तो भला ब्रह्मा और किसे बचा सकता है। सूरदास कहते हैं, हे उद्धव, अपने प्रिय से हम तो पूर्ण रूप से अलग हो गई है, भला हमारी दवा किस विद्या से हो सकती है, अर्थात हमें कोई क्या संदेश दे सकता है। काव्य सौंदर्य पहला, अलंकार संपूर्ण पद दृष्टांत माला का सुंदर उदाहरण है। दूसरा, गंगा विष्णु के चरण में थी, वहां से गिरते गिरते वह अंतः संसार के नरक स्वरूप समुद्र में आ पड़ी। सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र माने जाते हैं, उनसे भी छुटकर ये आज भी अहर्निश गगन मंडल की परिक्रमा करते रहते। भर्तृहरि ने इस संबंध में शुक्ति दी है, वेक भ्रष्टानाम भवती विनिपातः शतमुखा, कहत कट पर देसी की बात मंदिर अरद अवधि बदी हमशो हरि आहार चली जात शिशिरिपु बरस सूर रिपु जुगबर हरि रिपु किए फिरे घात मग पंचक ले गए श्याम धन आय बनी यह बात नखत वेद ग्रह जोड़ी अर्ध करी को बरजे यह हम खात सूरदास प्रभु तुम ही मिलन को कर मीरति पछितात। संदर्भ, इस पद में गोपियां कृष्ण को अपने वचन का पालन करने का उद्धव के द्वारा उपालंब दे रही है। व्याख्या, गोपियां कहती है, हे उद्धव, तुम उस परदेशी कृष्ण की क्या बात करते हो, हम लोगों को तो अब उसकी बात का विश्वास नहीं। वह तो हम लोगों को 15 दिन में ही लौटने का वचन दे गया था, किंतु महीनों बीत गया और उसका पता ही नहीं चला। हम लोगों को तो कृष्ण के बिना 1 दिन 1 वर्ष और 1 रात 1 युग के बराबर प्रतीत होती है, और कामदेव हमेशा हमारे ऊपर आघात करने की ताक में लगा रहता है। हे उद्धव, कृष्ण को यहाँ से गए ही साथ में हमारा मन भी लेते गए, अब तो हमें इस कष्ट से मुक्त होने का एक ही उपाय है, हमें विष खा लेना चाहिए। सूरदास कहते हैं, गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रही है। काव्य सौंदर्य सूर का यह पद कूट शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे बहुत से पद सूर्यकृत बताए जाते हैं, पर इन्हें सूर की रचना मानने में थोड़ी परेशानी है। सूर जैसा भाव को रस का सागर बहाने वाला कवि ऐसी रचना नहीं कर सकता जिसमें केवल शब्द कीड़ा हो, भाव तथा रस का कोई स्थान न प्राप्त हो। इस पद में गोपी की विरहानुभूति की अपेक्षा पहेली बुझौवट की प्रवृत्ति ही दृष्टिगत होती है। संदेशो देवकी सो कहियो हौतो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो उबटन तेल और टाटो जल देखत ही भजित जाते जोई जोई मांगत सोई सोई देती करम करम करी नहाते तुम तो तेव जानती ही हो तव मोही कही आवे प्रात उठत मेरे लाल लड़े तिही माखन रोटी भावे। अब यह सूर मोही निशिबासर बड़ो रहत जिये सोच मेरे अलकल रेटे लालन हुए हुए करत संकोच। संदर्भ, प्रस्तुत पद में माँ के हृदय का पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव व्यंजित हुआ है। व्याख्या, सूरदास जी के शब्दों में माता यशोदा कह रही है, पथिक देवकी से यह संदेश कहना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, अतः मुझ पर कृपा ही करती रहना। यद्यपि तुम अपने पुत्र का स्वभाव जानती हो, फिर भी मुझसे कहे बिना नहीं रह जाता कि मेरे दुलारे लाल को सवेरा होते ही मक्खन रोटी प्रिय लगती है। वे तेल उबटन और गर्म पानी देखकर भाग जाते, अतः जो जो हुआ मांगता था वही वही मैं देती थी और इस प्रकार धीरे धीरे करके स्नान कराती थी। अरे पथिक सुनो, मुझे रात दिन यही सोच बढ़ा रहता है कि मेरा अत्यंत दुलारा मोहन मथुरा में संकोच करता होगा। काव्य सौंदर्य अलंकार जोई जो और सोई सोई और करम करम में पुनरुक्ति प्रकार। दूसरा, माँ यशोदा के द्वारा वियोग वात्सल्य की बड़ी कोमल और मार्मिक अभिव्यक्ति इस पद में हुई है। तीसरा, अनुभूति के स्तर पर व्यक्ति की विशिष्टता समाप्त हो जाती है और वह सामान्य जन के जैसा अनुभव करने लगता है। यहाँ कृष्ण और माँ यशोदा लोक अनुभूति के अत्यंत साधारण स्तर पर आ गए और इसलिए उनसे हमारा इतना गहरा तादात्म्य होता है। उठो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगड़ी, अरुकुंजनी की छाही, वै सुरभि वै बच्छे दोहनु खड़िक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिलिकृत कुलाहल नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता हल जाही, जब ही सुनति आवती वा सुक्की जी उमंगत तन नाही, अनगत भांति करो बहु लीला जसुदा नंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए यह कही कही पछताही। सौंदर्य प्रस्तुत कवि प्रस्तुत पद में कवि ने विप्रलंब के स्मरण दशा का वर्णन किया है। कृष्ण गोकुल की याद में व्याकुल होकर अपने अतरंग मित्र उद्धव से कहते हैं। व्याख्या, कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, हमें ब्रज की याद भूलती ही नहीं, यमुना के सुंदर कछार और कुंजों की छांव में की गई मनोहर क्रियाएं भूलती ही नहीं। वहां की सुंदर गायों को दूहने के लिए हम लोग बछड़े और डोहनी लेकर खड़िक में जाते थे। वहां ग्वालों के लड़के आपस में पकड़ पकड़ कर आनंद में विभोर होकर नाचते थे। हे उद्धव, यद्यपि मथुरा सोने की नगरी है अर्थात विपुल वैभव से संपन्न है, फिर भी अब हमें ब्रज की याद आती है जो मेरा मन बार बार उमंगने लगता है और मुझे अपने देह की भी याद भूल जाती है। वहां मैंने अनेक प्रकार की लीलाएं की, उधम मचाया, किंतु माँ यशोदा और बाबानंद ने सबका निर्वाह किया, कभी बुरा नहीं माना। यह कहते कहते कृष्ण व्यथा से एकदम मौन होकर पछताने लगते हैं। काव्य सौंदर्य, ब्रज की धरती सहज उत्फुल्लता और कृत्रिम जीवन की स्थली है। कृष्ण को मथुरा का वैभव और कृत्रिम प्रतिष्ठा पसंद नहीं, यह स्मरण का अलंकार है। ब्रज पर मंदर करत है काम, कहियो पथिक श्याम सो राखे आई आपनो धाम, जलद कमान बारी दारू भरी तरित पली ता देत, गर्जन अरु तरपन मनुगोला पहड़क मय गढ़त लेत, लेहु लेहु सब करत बंदीजन कोकिल चाटक मोर, दारुर निकर करत जो टोवा पल पल में चहु ओर, ऊधो मधुप जसूस देख गयो तुत्यो धीरज पानी, राखिबे होए तो आनी राखियो सूर लोक निज जानी। संदर्भ, प्रस्तुत पद में गोपियां अपनी संकटपूर्ण स्थिति का संदेश भेजकर अवगत करा रही है। व्याख्या, सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है कि सखी, कामदेव ब्रज पर मंदराता रहता है, अतः पथिक श्याम सुंदर जी से जाकर कहना कि आकर हमारे घर की रक्षा करे। वह कामदेव मेघ रूपी कमान में जल रूपी बारूद भरकर बिजली रूपी पलीटा देता है और उन मेघों का गर्जन और टरकना ही मानो गोला है। अब थोड़े समय में ही किले को जीत लेगा, ले लो ले लो। यह पुकार सबके सब बंदीजन कोकिल पपीहे और मयूर कर रहे हैं तथा मेढकों का समुदाय जो छन छन चारों ओर शब्द कर रहा है वह भी मानो यही ध्वनि संकेत कर रहा है। उद्धव रूपी भोरा तो उसी कामदेव का जासूस बनकर प्रथम ही यह सब दशा देख गया है, हमारे हाथ से धैर्य छूट गया है। अब यदि वे हमको समझ कर रक्षा करना चाहे तो आकर रक्षा करें। काव्य सौंदर्य, यहाँ कामदेव को सेनानायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो पावस रूपी सेना से सुसज्जित होकर कृष्ण विहर विरहित और असहाय गोपियों के प्रसुप्त काम भाव को उद्दीप्त करके उनका सर्वस्व यानी कृष्ण के प्रति एक निष्ठा को लूट लेना चाहता है। सूर्य ने मध्यकालीन युद्ध की समस्त सामग्रियों को यहाँ पर ला जुटाया है। दूसरा, अलंकार, संपूर्ण पद में शांग रूपक का बड़ा सफल निर्वाह हुआ है। बूझती है रुक्मिणी पिय इनमें को वृष भानु किशोरी, नैकू हमें दिखड़ावहु अपनी बालपन की जोड़ी, परम चतुर जिन किन्हे मोहन अल्प बशे ही थोड़ी, बाड़े ते जी यह पढ़ायो बुधिपल कल विधि चोरी, जाके गुणगनी ग्रंथित माला कबहू न उड़ते छोड़ी, मनसा सुमिरन रूप ध्यान उड़ दृष्टि न उत इत इत उत मोड़ी, वह लखी जुवती वृंद में ठाड़ी नील बसंतर गोरो, सूर्यदास मेरो मनवा की चितवनी बंक हरियोड़ी। संदर्भ, इस पद में कृष्ण की परिणीता रुक्मणी मेले में राधिका का परिचय कृष्ण से पूछ रही है। व्याख्या, रुक्मणी ब्रजबालाओं के समूह को इंगित करके पूछती है कि प्रिय, इनमें विश्वभानु की चर्चित कन्या राधिका कौन है, हमें जरा अपनी बाल्यावस्था की सहचरों को दिखाओ कि अत्यंत छोटी उम्र में ही आपको परम चतुर बना दिया था, जिसने बचपन में ही आपको चोरी करने की कला बुद्धि और प्रक्रिया को सिखाया था, और आप जिनके गुण समूह का सर्वदा स्मरण करते रहते हैं, तथा वह भी हृदय में हमेशा आपका ही ध्यान आप नेत्रों में आपके ही रूप का निवास रखती है, ऐसा मैं सुनती हूँ। कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी उधर देखो, वही युवतियों के समूह में खड़ी गोरी शरीर वाले जिसके बदन पर नीले रंग की साड़ी शोभा पा रही है वही राधिका है। इसी राधिका की बंकिम चितवन ने मेरे मन को मोह रखा है। काव्य सौंदर्य, व्यक्ति जिसमें अपना प्रतिरूप सबसे अधिक पाता है उसी की ओर अधिक आकृष्ट होता है। कृष्ण नीलावर्ण है, तो उनका वस्त्र भरण पीतवर्ण, उधर राधिका राधिका पीतवर्ण है तो उनका वस्त्र नीला। दूसरे को प्रेम करके वस्तुतः हम अपने को ही प्रेम करते हैं। इस दृष्टि से यदि कृष्ण राधिका में अपना प्रतिबिंब देखकर उस पर लट्टू होते हैं तो यह सहज और स्वाभाविक ही है। समाप्त।